الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير المعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سورہ یونس آیت نمبر 94 اور 95، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے: وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون. اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہم خاسرین کے کلمے کو قرآن کریم کی مجموعی آیات سے مطالعہ کر رہے تھے، اور خسارے والے اعمال جنہیں قرآن نے خسارہ کہا ہے اسے ہم دیکھ رہے تھے. قرآن کریم نے ظاہری اعمال میں مال جان کے جانے کو خسارے سے تعبیر نہیں کیا، بلکہ قرآن نے انسانی نفس کے اوپر نفع اور نقصان کی تشخیص پہلے کی ہے، اور اس کی بنیاد پہ جو ہمارے پاس عملی صورت میں نفع نقصان آتا ہے اسے نقصان ہو یا نفع قرار دیا ہے. قرآن میں عمومی طور پہ خسارے کے مقابلے میں کلمہ فلاح یا کلمہ فوز آیا ہے، اور ان دونوں کلمات کے مقابل خسارہ لفظ وارد ہوا ہے. گزشتہ درس میں خسارے کے عنوان سے جو آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ جسے خسارہ قرآن نے کہا ہے وہ ایک مجموعی گروہ کا اللہ کی نافرمانی کرنا ہے. اگر ایک گھر ہے، اس گھر میں بھی برملہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو وہاں پہ عذاب کسی نہ کسی صورت میں آ کے رہتا ہے. وہ عذاب ضروری نہیں ہے کہ سختی ہی کی صورت میں ہو، امحال بھی ہو سکتا ہے، استدراج بھی ہو سکتا ہے. فَأَمْحِلْهُمْ رُوَيْدَا، جیسے سورۃ الطارق میں ہے، یا استدراج ہے نُمْلِ لَهُمْ، کہ ہم انہیں خود ڈھیل دے رہے ہیں، تو ڈھیل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی گمراہی کی اوج کمال تک پہنچ جائے، پھر اللہ تعالیٰ اسے گرفت میں لیتا ہے. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ تکلیف و امراض اور ان صورتوں میں انسان کے اوپر مختلف قسم کے عذاب آتے ہیں. عذاب آنے کی صورت وہ مسلسل گناہوں کی، مثلا ایک گھر میں گانا گانا برا ہی نہیں سمجھا جاتا، ادھر عذاب کی صورت آئے گی. اگر ایک گھر کے اندر ایک فرد ہے، وہ ہیڈ فون میں یا چپ چپ کے سے گانے سنتا ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے، تو یہاں پہ تو حق نہیں بنتا شور شرابہ مچایا جائے، نصیحت عمومی بنتی ہے. لیکن ایک اجتماعی عمل ادھر انجام پانے لگ جائے خاندان میں یا ایک معاشرے میں، وہاں پہ انسان وہ کہے کہ تم مجھے بھی عذاب کا شکار کرنے میں تمہارا ہاتھ بھی ہے، سبب بن رہے ہو، اس لیے میں خاموش نہیں رہ سکتا اس جگہ پہ. مثلا بیجا فلمیں، فحش فلمیں دیکھی جاتی ہوں اور کوئی اعتراض نہ ہو، یہ جو اعتراض کا نہ ہونا ہے یہ وہاں پہ عذاب کا شکار اس معاشرے کو یا اس ماحول کو کر دے گا. اسی طرح سے اور گناہ ہیں، مثلا جوا کھیلنا، تاش کھیلنا، یہ میں گھروں کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ معاشرے کا سب سے اقل اور چھوٹا مصداق وہ ایک گھرانہ ہے. معاشرے کا سب سے چھوٹا مصداق وہ ایک گھرانہ ہے جو چند افراد کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے اوپر یہ سارے ضابطے جاری بھی ہوتے ہیں. اس لیے جب نصیحت کریں وہ اطاعت الہی کی نصیحت کریں، جب نصیحت کریں واجبات کی ادائیگی کی نصیحت کریں، محرمات سے بچاؤ کی نصیحت کریں. کیونکہ اگر ایک معاشرہ وہ گناہ اللہ کی نافرمانی کا شکار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طرح سے تین الفاظ الگ الگ لائے ہیں: حساباً شدیدہ، عذاباً نکرہ، فذاقت وبال امرہا، اور پھر کہا کہ ان کی جو عاقبت ہے وہ خسرہ، خسارے میں ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس چند اور عناوین آتے ہیں، اس کی تشریح مزید آگے ہو جائے گی. صرف میں آپ کے سامنے عناوین پڑھ دیتا ہوں. نبی کی عدم اطاعت، جیسا کہ سورہ نوح آیت نمبر 21 میں ہے: قال نوح، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: رب انہم عصونی، اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے. واتبعوا، اور من لم یزدہ مالہ ولا ولد مالہ وولدہ الا خسارہ، کہ ان کا جو مال اور ان کی جو اولاد ہے جتنی زیادہ ہو جائے وہ خسارے کا ہی باعث بنے گی. ولم یزد مالہ وولدہ الا خسارہ، کہ جتنا بھی ان کا مال اور اولاد زیادہ ہوتا چلا جائے وہ فقط اور فقط क्या बनेगा, खसारा बनेगा। जैसे हमारे माशरे में बाज़ लोग हैं गुनाहों में अटे हुए होते हैं, पूरा उनका वजूद गुनाहों के अंदर है, फहाशी उनके अंदर कोई ऐसी कबाहत और कराहत नहीं रखती, अंजाम देते हैं, गाने सुनना कोई मसला नहीं है, बदहिजाबी बेहिजाबी कोई मुश्किल ही नहीं है, बेहिजाबी ना महरम महरम की कोई गोया के तमीज़ है ही नहीं। अच्छा, इसी तरीके से हलाल हराम का कुछ पता नहीं है, खुम्स ज़कात उसकी भी कोई रियायत नहीं है, पूरा गुनाहों में अटा हुआ है। लेकिन चूंकि माल और औलाद है, माशरा कहता है कि ये शरीफ इंसान है। ऐसे शरीफ हमारे पाकिस्तान में बहुत हैं, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे शरीफ बहुत हैं जो अंदर से कामिलन बदमाश हैं, कामिलन बदमाश, लेकिन माल और औलाद की बुनियाद पे क्या हैं, शरीफ बने हुए हैं। क्योंकि बदमाश हकीकत में वही है कि जो अल्लाह के सामने रसूल और नबी की बात को ही तस्लीम ना करे, अल्लाह की मिल्कियत में रह रहा है और अल्लाह ने अपना बंदा भेजा है कि जाओ इसे पैगाम दो मेरा कि ये काम करे, और वो अल्लाह ही के सामने उसको झुटलाता है और नाफरमानी करता है। लिहाजा बाज़ ऐसे नफूज हैं बदहिजाबी पे उनके वजूद पे कोई जूं भी नहीं रेंगती, वो गैरत का मादा ही नहीं होता कि रेंगे, मर्द में गैरत होती है, मर्द रहे नहीं है तो कहाँ से वो जूं रेंगेगी। अच्छा, इसी तरीके से गाने आम हैं, फिल्में आम हैं, कोई परेशानी नहीं है। और फिर वो आखिर में क्या है कि हमने कुरान पाक तो घर में रखा हुआ है, या मौलाना साहब को बुला के हमने वो पढ़वाया भी था कुछ, तो क्यों फिर क्यों बुला दूर नहीं होती। इस तरह के बड़े मसाइल हैं कि गुनाहों दर गुनाहों में पूरा घराना अटा हुआ है। एक बंदे के मुमकिन है अपने गुनाह ना हो, वो जो घर के अंदर मजमूई तौर पे गुनाह हो रहे हैं उसकी वजह से ये बेचारा अजाब में मुबतला है, उसकी वजह से अजाब में मुबतला है। जैसा कि हमारे पास ऐसी रवायात वारिद हुई हैं कि अगर एक जगह पे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम या दाऊद अलैहिस्सलाम, इन्हीं से मरबूत एक हदीस में, हदीस कुदसी में वारिद हुआ है, अज़ाब का अल्लाह ताला ने कहा, मैं मफहूम बयान कर देता हूँ कि अज़ाब इलाही का अल्लाह ने बयान किया, तो उन्होंने नबी ने पूछा किन किन पे आएगा, तो अल्लाह सुबहान ताला ने बताया कि इतने फासिकीन मरेंगे और इतने काफिरीन मरेंगे और इतने सालेहीन नेक और पाकीज़ा अफराद मरेंगे। वो बड़े ताजुब में, ये परवरदगार नेक और साले हैं, कहा कि ये जो नेक और साले हैं ये चूंकि बुराई से रोकते नहीं हैं, इस वजह से ये इनके जुर्म में शरीक करार पाएंगे और उनके ऊपर अजाब आएगा। चूंकि इन्होंने रोका नहीं है, उन्हें आवाज़ बुलंद नहीं की, इस वजह से उनके ऊपर अजाब आएगा। हमारे यहाँ इस वक्त मुमलिकत पाकिस्तान या दीगर इस्लामी ममालिक सालेहीन यही इसी इन्हीं दूसरों के गुनाहों का अजाब अपने ऊपर भी झेल रहे हैं, और घरानों के अंदर ऐसा होता है कि बदअमालियाँ इज्तमाही तौर पे पूरा कुंबा कर रहा है, वो बेचारा जो एक नेक बंदा है वो उन्हीं के अजाब का शिकार होकर बैठा हुआ है। इसलिए यहाँ पे इस तरफ याद रखें, मन लम यजिद मालहू व वलदहू इल्ला खसारा। उन्होंने इत्तबा किसकी की है, व तबाऊ, उन्होंने उस शख्स की इत्तबा की है कि जिसकी माल और उसकी औलाद वो जितनी बढ़ती चले जाए वो खसारे ही का शिकार होगी। यानी उन्होंने फासिकीन जो नबी के मुकाबले में था उनकी इताअत, इन्नहुम असाउनी मेरी मासियत की है, वत्तबाउ मल्लम यजिद हुमालहू वलदहू इल्ला खसारा। लिहाजा नबी की किसी सूरत में भी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद दीगर अनावीन हैं, जैसा कि सूरह रहमान में इरशाद बारी ताला होता है, व अकीमुल वज़्न बिलक़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान, मीज़ान में खसारा मत करो, कमी बेशी ना करो, या औफुल कैल वला तकूनु मिनल मुख़सिरीन, सूरह शुरा आयत नंबर 181 में है। यानी दीन इस्लाम ने नाप तोल को बहुत अहमियत दी है। इधर ये ज़ाहरी अमल, अब हमारी जो गुफ्तगू चल रही है वो अफकार से निकल के अमल में दाखिल हो गई है। आप ये देख रहे हैं कि ये जब आई है नाफरमानी की, कि कल का जो दर्स था और आज का जो दर्स था, अब कुरान करीम वो आमाल बता रहा है जो खसारे वाले हैं। ये जो आमाल हैं क्यों खसारे वाले हुए हैं, क्योंकि बातिन के अंदर खसारा बरपा हुआ है, बातिन में कुफ्र है, बातिन में तकजीब है, बातिन में निफाक है, बातिन में इनहराफी कोई फिक्र पाई जाती है। ये वजूहात बनती हैं कि अमल जो है अब वो खसारे वाला है। यानी माशरे में इज्तमाही तौर पे अल्लाह की नाफरमानी ये अमल है खसारे वाला, यानी अल्लाह की नाफरमानी खसारा है। अमली नाफरमानी खसारा है। नबी खुदा की मासियत करना वो खसारा है। इसी तरीके से एक और अमल जो हमारे माशरों में है और इसमें भी इस वक्त का मौजूदा दुनिया का माशरा वो जकड़ा हुआ है, इस बीमारी में पूरी दुनिया जकड़ी हुई है, कोई मुस्तस्ना नहीं है इस जुर्म से, और वो ये है कि तराजू में हेर फेर करना, नाप तौल में कमी बेशी करना। अल्लाह ने कौम शुआब अलैहिस्सलाम पे अजाब नाजिल किया, बड़े बड़े जो गुनाह थे उनमें से एक गुनाह ये था, तराजू में हेर फेर, पूरी दुनिया इसमें जकड़ी हुई है। लिहाजा कुरान ने बार बार इसे कहा वाइज़ा कालूहुम वज़नूहुम युख़सिरून, के सूरह मुतफ़फ़ीन की आयत नंबर 3 है कि जब वो वज़न वगैरह करते हैं तो कमी बेशी करते हैं। ये आमाल आपने मुलाहजा किए, क्योंकि बाज़ आमाल हैं उसकी तशरीह में हम लोग जाएंगे। इन्हीं आमाल में से एक है अपनी औलाद को हमाकत की वजह से कत्ल कर डालना, जैसे कि सूरह अनआम आयत नंबर 140 में है, कद खसरल्लज़ीन क़तलू औलादहुम सफ़हन बग़ैर इल्म, कि वो लोग खसारे में हैं कि जिन्होंने अपनी औलाद को हमाकत की वजह से बेदून इल्म बग़ैर इल्म के कत्ल कर दिया। वह हर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाह, और अल्लाह ने जो रिज़्क़ उनके लिए रखा था उसे हराम करार दे दिया। इफ्तिराअन अलल्लाह, अल्लाह पे इफ्तरा और झूठ बांधते हुए, कद ज़ल्लू, वो गुमराह हुए, वमा कानु मुहतदीन, और हिदायत याफ्ता नहीं थे। और ये मंज़र आज भी हमें बाज़ औक़ात अखबारों में देखने को मिल जाता है, गुरबत की वजह से सबको आके उन्होंने कत्ल कर दिया। अगर गुरबत ये सबब बनती है कि सबको कत्ल किया जाए, तो क्या राज़िक बंदा है या अल्लाह की ज़ात है? वो अल्लाह के जिसने इंसान को खल्क किया और एक कतरे नजिस को एक इंसान में ढाल दिया, उस अल्लाह की अजमत को देखें कि उसने जो कतरे बेआब, कतरे बेकीमत था, उस बेकीमत कतरे से एक इंसान को वजूद दिया, उसकी परवरिश उस वक्त की कि जब उसको कोई भी रिस्क नहीं दे सकता। माँ के शिकम में कौन उसे रिस्क दे सकता है? कोई भी रिस्क देने वाला नहीं है। उसकी जो करवटें माँ के पेट में हैं, अगर बच्चा एक हालत में लेटा रहे मर जाएगा। उसकी करवटें हैं कि जो करवटें वो बदलता रहता है, वो कौन है कि जो उसे हरकत दे रहा है, कौन है कि जो उसे गज़ा दे रहा है, कौन है जो उसे रिस्क दे रहा है? फिर इस दुनिया में मुतवल्लिद होता है, आज भी साइंस इस दुनिया में मुतवल्लिद बच्चे के वक्त ज़्यादा चांसेस देती है कि माँ मर सकती है, बच्चे को भी कुछ हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा बच के आएगा, कोई गारंटी नहीं है दुनिया में। दुनिया में किसी जगह पर भी बच्चे की विलादत के वक्त कोई डॉक्टर गारंटी नहीं दे सकता कि बच्चा बच जाएगा। वो मौत और हयात के दरमियान होता है, इसलिए आ जाता है तो उसके पाँव में थोड़ी सी ज़र्ब लगाते हैं, रोता है तो पता लगता है हाँ ठीक है, ना रोए तो मसाइल ही मसाइल हैं। इसी तरीके से माँ के पेट में क्या उसे हो रहा है कुछ पता नहीं है, एक तखमीने लगाते हैं, वो मुख्तलिफ तरह के स्कैन करते हैं, तखमीने लगाते हैं, लेकिन बच्चे की गारंटी कोई भी नहीं देता कि वो बच जाएगा या माँ बच जाएगी। तो अल्लाह की ज़ात किस तरह इंसान को इस दुनिया में खल्क करती है, मुतवल्लिद करती है, फिर उसके रिस्क का अहतमाम करती है, ये पकड़ के सफ़हन बग़ैर इल्म कत्ल कर देता है। और इस तरह के वाक़यात वाकई ताजुबावर है कि आज के दौर में इंसान जो है अक्ली तौर पर बाशऊर होता जा रहा है, ऐसी सूरत में इस तरह के वाक़यात हमें माशरों में देखने को मिले। बहरहाल एक सबब खसारा, ये बहुत बड़ा खसारा है, वह खसरल्लज़ीन क़तलू औलादहुम, जिन्होंने अपनी औलाद को कत्ल किया। इन्हीं आयात में से एक अहम जो सबब खसारे का है, जिसे थोड़ा सा हमें तोलानी भी करना चाहिए कि उसमें कई नुकात हमारे पास हैं, वो है शैतान को वली बनाना। सूरह निसा आयत नंबर 119 में इरशाद बारी ताला होता है, सूरह निसा आयत नंबर 19 में, और ये शैतान की बातें हैं जो कुरान ने रकम कर दी। बातें किसकी हैं? शैतान की। और शैतान के देखें कि धमकी कैसी है और कितनी कुव्वत के साथ कहा। और बड़ी दिलचस्प बात भी यहाँ पे एक अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कलाम में मौजूद है, खुतबे कासिया में। पहले आप शैतान का बयान देखें। शैतान कहता है वला उज़िल्लन्नहुम, मैं हतमन व हतमन इसे गुमराह करके छोड़ूंगा, हतमन गुमराह करूंगा। जैसे नहीं इंसान सही गुस्सा और गज़ब में और हसद की आग में जला हुआ इंसान हो, दो फरीक आमने सामने हो, वो कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा, सख्त तरीन लहजे में धमकियां देता है या नहीं? शैतान इस तरह इंसानों को धमकियां दे रहा है और इंसान वो गाफिल है। जैसा है ना कसाब, वो छुरी तेज कर रहा होता है और बकरा अपनी घास खा रहा होता है, कहता ठीक है तू अपना काम कर मैं अपना काम करता हूँ। शैतान पूरी तैयारी के साथ आ गया, ये अपने नवाले खा रहा है, वो खतरा ही नहीं महसूस कर रहा। कुरान ने वाहिद दुश्मन है जिसे कहा है कि अदुवन मुबीन, खुला दुश्मन है, दंदनाता दुश्मन है तुम्हारा, बकिया तो छुपे हुए होते हैं। ये दंदनाता है, कम जगहों पे ये आड़ में आ जाता है, घात लगा के सिराते मुस्तकीम पे फकत बैठता है। सिराते मुस्तकीम के अलावा शैतान घात लगा के नहीं बैठता, यानी सिराते मुस्तकीम पे घात लगा के बैठा हुआ है, थोड़ा सा उधर मस्तियों में आए तो चलो काबू में करके उसे उस सिरात से बाहर निकाल के अपने पास अगवा करके ले जाए। इसलिए उसने कसम खाई है कि लाउबियन्नहुम, मैं इन्हें अगवा करूँगा, और कहा कि मैं सिराते मुस्तकीम पे घात लगा के बैठा रहूँगा। लेकिन बकिया जगहों पे क्या वो दंदनाता फिरता है शैतान, सिराते मुस्तकीम पे उसे कोई उस रूट पे इजाज़त ही नहीं देगा कि तुम दंदनाते फिरो, सिराते मुस्तकीम पे तो ज़ाहरा नहीं आ सकता दंदनाते हुए। लिहाजा वहाँ पे क्या करता है, वो सिराते मुस्तकीम पे वहाँ छुपके से एक घात लगा के बैठता है, उसकी रसाई नहीं है सिराते मुस्तकीम के ऊपर आके बैठे और उधर बदमाशी दिखाए शैतान और इबलीस की, कि उसके बदमाशी इन पाकीज़ा हस्तियों पे नहीं है। लिहाजा वो वहाँ पे घात लगा के बैठ के अगवा करता है और ऐसा अगवा करके अपने पास ले जाता है। लेकिन बकिया हर जगहों पे दंदनाता हुआ दुश्मन ये मौजूद है, लिहाजा वो क्या कहता है, वला उज़िल्लन्नहुम, हतमन व हतमन मैं इन्हें गुमराह करूँगा, वला उमन्नियन्नहुम। अब तरीक़े वारदात देखें वो क्या हैं, इसके बाद सारा गुमराह करने के तरीके शैतान के हैं वो बयान कर रहा है। वला उमन्नियन्नहुम, इन्हें मैं ज़्यादा तमन्नाएँ दिलाऊँगा, उम्मीदें दिलाऊँगा, देखो ये करो वो हो जाएगा, फ़लाँ करो फ़लाँ हो जाएगा। मतलब तुम अगर कजावत पढ़ो, क्योंकि ईरान में ये वाला मसला है, काजी लग जाओगे, बहुत सारी बड़ी एक तादाद है वो सिर्फ किताबुल कज़ा पढ़ती है, और किताबुल कज़ा पढ़ के वो फिर अदालती उमूर का इम्तहान देते हैं और आगे लगना शुरू हो जाते हैं, और इन्हीं जैसे फासिकीन की वजह से इधर निज़ाम में भी गड़बड़ आई हुई है। बहरहाल इंसान उम्मीदें बनाता है, तुम ये कर लो इतना पैसा आ जाएगा, ये कर लो इतने ताल्लुकात बन जाएंगे, ये कर लो इतनी तुम्हें शोहरत हो जाएगी, फलां से ये कर लो। वला उमन्नियन्नहुम, तमन्नाएं उम्मीदें, उनकी तमन्नाएं भड़काता रहेगा। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों से ये रिवायत मनकूल है कि इन्नमा अख्वफुल अखाफु अखा इन्नमा अख्वफु मा अखाफु, कि मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का तुम्हारी तरफ से डर है वो इत्मीनान, दो चीज़ें हैं। एक क्या है, कसरतुल हवा, ख्वाहिशात ज़्यादा हैं, यानी शहवतें काबू नहीं होती, कसरत पाई जाती है, इसलिए कसरत को आइमा अलैहिस्सलाम ने नफ़रत की निगाह से देखा है। ये जो कसरत हवा है यही हमारी भी ख्वाहिश होती है कि कसरत दिखाई ना दे, इस्तेमाल दिखाई दे, कसरत ना दिखाई दे। मसलन कसरतुल नौम, ज़्यादा सोना, कसरतुल अक्ल, ज़्यादा खाना, कसरतुल कलाम, ज़्यादा गपशप महाफिल बर्पा करना, इसी तरह गफलत में पड़े रहना, कसरतुल हवा। व तूलुल अमल, दूसरा क्या है, तूलुल अमल, लंबी लंबी उम्मीदें बांधी होंगी, मेरा भाई ये कर देगा, मेरे वालिद ये कर देंगे, फ़लाँ दोस्त है मेरा वो ये कर देगा, लंबी लंबी उम्मीदें बांधी होती हैं, फिर एक एक करके उम्मीदें टूटती हैं, और जब टूटती हैं तो बजाय इसके कि अल्लाह की तरफ रुख हो, वो अल्लाह से मायूस होना शुरू हो जाता है, उल्टा हिसाब, क्योंकि शैतान आखिर दम तक छोड़ता नहीं है इंसान को। यहाँ पे वला उमन्नियन्नहुम, ये वही अमल, वो लंबी उम्मीदें तमन्नाएं ज़्यादा कर देना, यार मैं ये चाहता हूँ, फलां चाहता हूँ, मैं इस इलाके में कैसे तबलीग कर सकता हूँ, यहाँ पर ना गहने रहने के लिए सही तरह घर है, ना लोग पूछते हैं, मस्जिद इस तरह है, खाने को कुछ मिलता नहीं है। जैसे बाज़ अफराद हैं भूख उनसे बर्दाश्त नहीं होती, बाज़ अफराद मुमकिन है कि वो इज़्ज़त और शोहरत के प्यासे होते हैं, बाज़ अफराद में कुछ कोई और अंसर होता है, तो शैतान उसी चीज़ से इस्तफादा करता है जो इंसान के अंदर उभरी हुई चीज़ होती है। वला उमन्नियन्नहुम, वला आमुरन्नहुम, और फिर मैं उन्हें हुक्म दूंगा, शैतान की तरफ से ऑर्डर जारी होते हैं। ये हम जो इसे कहते हैं ना कि मेरी अक्ल कहती है, मेरा बड़ा बेहतरीन हिसाब किताब लग चुका है, मेरे बड़े तजर्बात हैं, ये जो मैं लेके आते हैं ये शैतान के अहकाम है पीछे से। वो नुमाइंदा खुद शैतान का होता है और फिर अपने आका की बातें सारी बयान, गलत सलत बातें सारी इंसान कर रहा होता है। इसलिए शैतान कहते हैं वला आमुरन्नहुम, मैं उन्हें हुक्म दूंगा। अब क्या होगा, हुक्म देगा तो क्या करेंगे वो? फला युबत्तिकुन्ना आज़ान अल अनआम। तब्तील कहते हैं कि शक कर देना, चीर देना। फला युबत्तिकुन्ना आज़ान अल अनआम। असल में ये होता था दौरे जाहिलियत में, एक चीज़ राइज और आम पाई जाती थी दौरे जाहिलियत में, और वो दौरे वालेकुम दौरे जाहिलियत में वो चीज़ ये थी कि जो जानवर थे जिनका गोश्त खाया जाता है और दूध से इस्तफादा किया जाता है जिन जानवरों के, उन जानवरों के कान के ऊपर वो एक अलामत लगा देते थे, चीर के चीर देते थे, और ये अलामत होती थी। और जिस जानवर के कान पे चीरा लग जाए और वो अलामत लग जाए, फिर उसका गोश्त उस माशरे में हराम शुमार होता था। तो ये यहाँ पे ये बयान करना चाहता है, जो अल्लाह ताला ने शरीयत के ज़रिए से हराम कर हलाल चीज़ें रखी हैं, मैं उन तमाम हलाल चीज़ों को हराम करार दे दूँगा। जब हलाल बंद हो जाए फिर हराम ही हराम है। इसलिए उसने कहा कि फलयुबत्तिकुन्न आज़ान अल अनआम है, कि मैं इन जानवरों के कानों के ऊपर इनसे ये चीरे लगवाऊँगा, ताकि यानी ये हराम यानी हलाल को हराम करार दे दूंगा मैं, और फिर वो हलाल से इस्तफादा नहीं कर सकेंगे। वला आमुरन्नहुम, और मैं उन्हें हतमन व हतमन ये हुक्म दूंगा, फला युगय्यिरुन्न खल्कल्लाह, वो अल्लाह की खिलकत को तब्दील करके हतमन रख दें। बाज़ ने इस आयत करीमा से दाढ़ी के वजूब के ऊपर भी इस्तफादा किया है, अलबत्ता कामलन होता नहीं है। फला युगय्यिरुन्न खल्कल्लाह, खिलकत इलाही के तहत दाढ़ी चेहरे पे आती ही है, लेकिन बकिया फुकाहा ने फिर इस इस्तलाल को कबूल नहीं किया, लेकिन दाढ़ी के मसाइल में इस आयत के करीमा से इस्तफादा किया जाता है। लेकिन हमारे मुफस्सरीन ने इस आयत के ज़ायल में जो मतलब बयान किया है वो ये बयान किया है, खलकुल्लाह यानी फितरतन जो इंसान जिन चीज़ों की तरफ माइल है उनसे इंसान को ममनू करार दे देगा। मसलन फितरी तकाजा निकाह का किया है, मर्द के पास जाया जाए या खातून के पास? खातून से एक ताल्लुक़ कायम किया जाए या मर्द से? खातून से इंसान ताल्लुक़ कायम करता है, वो वहाँ पे मर्द मर्द और खातून खातून का राबता करवा देगा। इसी तरीके से एक इंसान है वो मर्दाना शहवत रखता है और उस शहवत के अंसर के तहत एक कुंबा जन्म लेता है, वो एक बंदे को नामर्द करवा दे, नामर्द करा दिया, वो चाहता ही नहीं है, जिन्स तब्दील कराना शुरू कर दे, जैसे कि आजकल ये मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। या इसी तरीके से मुसला करना, कि जिस तरह ये मुशरिकीन में राइज था कि जो दुश्मन मारा जाता था उसके कान आंखें नाक और जिगर वगैरह काट के हार बना के गले में लटकाया जाता था, तो इंतहाई एक बदतरीन एक सूरत बनती थी। तो ये इस तरफ बोले यानी फला युगय्यिरुन्न खल्कल्लाह, अल्लाह की खिलकत को तब्दील करना वो चाहेगा, ये शैतान का हुक्म है। वमन यत्तखिज़ शैतान वलियन मिन दून अल्लाह, जिसने भी अल्लाह को तर्क करके शैतान को वली बना लिया, फ़कद खसर खुसरान मुबीना, वो वाज़े और आश्कार खसारे में पड़ जाएगा। लिहाजा ये सारे के सारे काम कब अंजाम पाएंगे? जब शैतान को वली बना दिया जाए। जब तक शैतान को वली ना बनाया जाए तब तक मुश्किल नहीं है। अल्लाहुल वलीयुल्लज़ीन आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, कि अल्लाह उन मोमिनीन के लिए अल्लाह वली है उन लोगों का जिनके जो ईमान लाए, और वो जो ईमान लाए और अल्लाह वली बन जाए वो जुल्मतों से नूर पे ले आता है। लेकिन वो अफराद जो शैतान को ही वली बना दें, और शैतान को वली बनाना ज़ुबान से नहीं होता, अब मैं क़ुरबतन फ़लाँ फ़लाँ ये वली शैतान को बनाता हूँ, इसे नहीं कहते शैतान को वली बनाना, बल्कि शैतान को वली बनाने से क्या मुराद है? इन्हीं चीज़ों की पैरवी करने लग जाए, तमन्नाओं के पीछे भागे, तमन्नाओं की वजह से तमन्नाएँ टूटती हैं, वहाँ पे भड़क उठे, या वो अपनी खिलकत के बरखिलाफ़ अपनी ज़िंदगी जिए। मसलन हमारे माशरे में दिन अल्लाह ने क्यों बनाया है? काम काज के लिए। रात क्यों बनाई है? सोने के लिए। रात नहीं सोता, यकीनन दिन को जब नहीं सोएगा तो रात को तो फिर जागेगा। लिहाजा तब तब इंसानी के बरखिलाफ़ चलना ये शैतानी अहकामात हैं, सवाई उसके कि जहाँ पे विलायत इलाही का तकाजा और उधर वो एक काम करता है, मतलब सलातुल्लैल पढ़ता और अल्लाह की विलायत में खड़ा हो जाता है। लिहाजा सारी की सारी बात इस दुनिया में हर जगह पे यही है, विलायत की बात है, या विलायत इलाही में है इंसान या विलायत शैतान में है। विलायत इलाही में गुनाह भी सादिर होते हैं तो तौबा का दरवाज़ा है। हसनात इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, कि नेकियाँ जो हैं वो भगा देती हैं। अल्लाह ताला ने कितनी चीज़ें रखी हैं, कितनी मुसीबतें हैं वो गुनाह धो देती हैं, अमराज हैं वो गुनाह धो देते हैं, नेकियां हैं वो गुनाह धो देती हैं। अच्छा, इसी तरीके से तौबा करता है तब गुनाह धुल जाते हैं, इस्तिग़फ़ार करता है तब गुनाह धुल जाते हैं, इबादत करता है तब गुनाह धुल जाते हैं। अब कोई शख्स गुनाहों के हमारा इस दुनिया से उठ जाए, मुझे बताएं किसका कसूर है? फिर तो उसी बंदे के ऊपर अजाब तो आना चाहिए, इस कदर अल्लाह ने वसतें रखी, इस कदर वसतें रखी। लिहाजा विलायत शैतान उसका पहचान इससे नहीं होती कि कौन किस मुल्क में रह रहा है, कौन किस मुल्क में रहे, असलन इससे पहचान नहीं होती। हो सकता है कि एक नबी या मासूम की औलाद हो और वो नबी और मासूम के घर में रहती हो और उसी के पास पलती बढ़ती हो, लेकिन उसका वली शैतान हो। और कुरान ने बयान भी किया है, काबिल एक नबी के बेटे थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के, कनान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था। आइमे अहले बैत अलैहिस्सलाम के औलादों में कितने ऐसे हैं कि आइमे अहले बैत के मुकाबले में वो भाई खड़े हो गए? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के कितने भाई हैं जो उनके मुकाबले में खड़े हो गए? अब्दुल्ला अफ्ताह है, वो उनके मुकाबले में खड़ा हो गया। इस तरह से और दीगर भाई हैं, हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के भाई जैद हैं, आए रोज़ मुश्किल खड़ी की होती थी, हत्ता कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को बरात करने पड़ी। बेटे थे हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के भाई। लिहाजा ऐसा हो सकता है कि विलायत शैतान का ताल्लुक किसी मुल्क के साथ नहीं है, विलायत शैतान का ताल्लुक किसी फ़िरके के साथ नहीं है, विलायत शैतान का ताल्लुक आमाल के साथ है। वो आमाल से पहचाना जाता है कि ये विलायत इलाही का कायल है या विलायत शैतान का कायल है। लिहाजा विलायत शैतान इसको कुरान करीम ने अहमियत के साथ उभारा है और इस वक्त दुनिया में असल जंग इसी की चल रही है। और ये जुमला फिर मैं आपकी खिदमत में जिक्र करूँ, विलायत इलाही में रहते हुए गुनाह भी सरज़द हो जाए वो काबिले मुआफ़ी है, और विलायत शैतान में नेकियाँ भी सादिर करते रहें तो वह हब्त कर ली जाएंगी, जैसे कि साबिक़ दुरूस में हम आयत करीमा पढ़ चुके हैं। इसलिए कामिलन कोशिश करनी चाहिए विलायत शैतान से बचें। शैतान ने उस वक्त दुश्मनी की है कि जब आदम ज़मीन पर भी नहीं आए थे, शैतान ने उस वक्त कसम खा के कहा था कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा कि जब हमारा नामो निशान भी नहीं था, अब हम आ जाएं तो शैतान दुश्मनी नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और इसी के ऊपर इख्तिताम, ये जो शैतान ने कहा है और विलायत भी उसकी मौजूद है और शैतान दंदनाता दुश्मन भी है, वो कामयाब हो जाएगा गुमराह करने में? ये जो धमकियाँ दी हैं ला उज़िल्लन्नहुम, या ये कि ला आमुरन्नहुम, ला उमन्नियन्नहुम, या ला उग़वियन्नहुम, ये कस्में कितनी बड़ी बड़ी कस्में उसने खाई और कितनी बड़ी बड़ी धमकियाँ दी, तो इन धमकियों के सामने हमें डर जाना चाहिए और वो हतमन कामयाब होगा अगर हम कुछ करें ना करें। हम मोमिन भी रहें तब भी कामयाब हो जाएगा क्योंकि शैतान इतना ताकतवर है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खुतबा कासिया ज़रूर सुने, तवील तरीन खुतबा है नहजुल बलागा का और बेहतरीन खुतबा है, और वह आदम अलैहिस्सलाम और शैतान की खिलकत से ताल्लुक़ रखता है और उन्हीं के बारे में। उसमें वो कहते हैं कि ये जितनी उसने धमकियाँ दी हैं ये ज़ुबानी कलामी धमकी हैं, यानी भड़के मारी हैं, और नादान बनी आदम ने उसकी इन भड़कों को सच कर दिखाया। ये जो गफलत और नादान बैठे थे वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो मुफ्ती जाफ़र हुसैन ने उस हिस्से का तर्जमा ये किया कि शैतान ने यह सब कुछ अटकल बिच्चू कहा था, अटकल बिच्चू यानी भड़के मारी थी उसने सारी अपने तौर पे गुस्से और हसद में, नहीं भड़के तो मैं ये कर दूंगा फलां कर दूंगा, अगला आगे से हंसता है कि तू कर ही क्या सकता है। शैतान की हालत ऐसी ही है। ये जो नादान बेशऊर और बेतवक्कुल अल्लाह पर नहीं रखते, बेसब्र हैं, शहवात उन पर गालिब हैं, इन नादानों ने शैतान की इन कस्मों को सच कर दिखाया, वल्ला शैतान को अल्लाह ताला ने ऐसा तसल्लुत बनी आदम के ऊपर नहीं दिया। वसल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व अलैहि ताहिर।